मेरे नौजवान अजीज साथियों नमस्कार। आज 15 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं कृष्ण नंदन ठाकुर, आप कोटियार रे सीतामढ़ी बिहार से हैं, राजू रंजन कुमार, आप भी सीतामढ़ी बिहार से हैं, विदुर गोहाना हरियाणा से हैं, कैलाश पति शाव निहाती वेस्ट बंगाल से हैं, शुभेंदु प्रसाद आप भी नैहाती पश्चिम बंगाल से हैं और रंजीत कुमार लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो कृष्ण, राजू, विदुर, कैलाशपति, शुभेंदु और रंजीत आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ इससे पहले कि न्यूज एनालिसिस पर आऊं कुछ थोड़ी सी दूसरी तरह की बातें भी करना चाह रहा हूं और इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये बातें भले ही मैं अपने 7th बैच के स्टूडेंट्स के माध्यम से आपके साथ कर रहा हूं लेकिन ये बातें बहुत जरूरी हैं और सबके काम की हैं और खासकर उनके लिए तो हैं ही जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं अपने 7th बैच के स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत से मेल मेरे पर्सनल मेल पर आ रहे हैं, जो मेल लिख रहे हैं मेरे पर्सनल मेल पर भेज रहे हैं vkagrawal57@gmail.com, शायद वो किताब से उन्हें ये मेल एड्रेस आईडी मिल गया है। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो अपना मेल जो एकेडमी हमारा AFEIS पर उस पर भेजें क्योंकि वो एक सिस्टम में काम करता है और मेरे पास वो सारे के सारे मेल पहुंच जाते हैं। मेरा जो पर्सनल एड्रेस है उस पर मेल भेजने से बचें, राइट फ्रेंड्स। एक जो दूसरी बात है जो मुझे लगता है कि कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी है दोस्तों एक मैराथन दौड़ की तरह होती है जो थोड़े से लंबे वक्त की मांग करती है। इस लिहाज से मुझे एक मेल मिला है जो हमारे 6th बैच के स्टूडेंट रहे हैं और उनकी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इनका नाम है रविंद्र कुमरावत और इन्होंने चाहा है कि मैं उनकी इस बात को सभी स्टूडेंट तक पहुंचाऊं। दरअसल मित्रों, जब स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं और मेल भी भेजते हैं उसमें बहुत से लोग अपनी इस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी का क्या करूं, नौकरी की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, मुझे वक्त नहीं मिल पाता, मैं मानसिक रूप से परेशान रहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे मेरी उनकी बिल्कुल सीधी सीधी सलाह यह होती है कि नहीं, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, इस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नौकरी है तो हमारे लिए बहुत बड़ा आर्थिक संबल है, सच पूछे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी उसी से जुड़ा हुआ होता है और वह नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इसी बात को लेकर के रविंद्र कुमरावत ने अपने कुछ अनुभव शेयर किए हैं। मित्रों, उनके कुछ शब्द मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि अपनी पहली स्थितियां बताई हैं और कि अपने परिवार के साथ वो इंदौर मध्य प्रदेश में रहते हैं और वहां एक पीतमपुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां नौकरी करते हैं। देखिए, अब मैं उनके शब्द आपके सामने रख रहा हूं। मुझे क्लास करे लगभग 9 महीने हो गए हैं और मैं एक निजी कंपनी में पीथमपुर में इंजीनियर हूं। मुझे क्लास में आने से पहले लगता था कि मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए तभी मुझसे आईएएस की तैयारी हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और मैं क्लास करने के बाद आज 9 महीने बाद मुझे ये लग गया है कि नौकरी करते हुए भी तैयारी की जा सकती है जो मैं कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इसके लिए मैं आपके द्वारा बताए हुए फार्मूले का, जैसे कि सिलेबस, अनसॉल्व्ड पेपर और करंट के टॉपिक से संबंध बनाकर जो पढ़ाई कर रहा हूं उससे तैयारी करने में मुझे जितना समय चाहिए उतना मेरे लिए पर्याप्त है और वह मुझे मिल रहा है। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़ी। यदि मैं छोड़ देता तो पता नहीं मैं आज कहां होता। इस सब के लिए आप मेरे आदर्श हैं और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरा आपसे अनुरोध है कि डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से, मतलब उनका यह संदेश और दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचा दिया जाए। और रविंद्र, मैं तुम्हारा यह संदेश दूसरों तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि यह जो समस्या है बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या होती है, लेकिन मैं दरअसल बताऊं कि यह समस्या है ही नहीं। इस समस्या को आप सब अपनी शक्ति समझें। आप उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि आपके पास नौकरी है, आपके पास अपना आर्थिक आधार है, और यदि आपको समय की कमी महसूस हो रही है तो याद रखिए उसका कारण नौकरी नहीं है, उसका कारण नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। समय की कमी आपको इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आपने दिमाग में ज्यादा समय की योजना बना रखी है। आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा समय तक पढ़ना चाहिए, जबकि सच बात यह है कि अगर आपको पढ़ने का तरीका आ गया, जैसा कि रविंद्र ने लिखा भी है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी पढ़ाई में आप अपनी पढ़ाई पूरा कर लेंगे, और अगर आपको थोड़ी पढ़ाई करनी है तो बट नेचुरल है कि आपको थोड़ा समय चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह जो थोड़ी पढ़ाई है यह है क्या, होगी कैसे, क्या क्या होगी। और मुझे लगता है मित्रों कि उस लिहाज से ये डेली ऑडियो लेक्चर आपकी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने न्यूज एनालिसिस पर आते हैं। आज के लिए मैंने जो मुख्य विषय चुना है फ्रेंड्स, वो नैतिकता का विषय चुना, एथिक्स को लेकर के हम लोग कुछ बातें करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी न्यूज के बारे में बता दूं, और न्यूज आप लोगों ने सुनी है, और न्यूज सुनने के बाद आपको लगा होगा कि खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको सुनने को नहीं मिली होगी। एक बात जो मैं यहां थोड़े से एडिशन के तौर पर कहना चाहूंगा, दो दिनों से आपने देखा कि हम लोग जो एपिक सम्मेलन जो हुआ और इसके बाद जो आसियान हुआ, इसके बारे में बातें कर रहे हैं, और उनकी काफी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में कल अगर आपने दूरदर्शन की न्यूज देखी हो तो एक और सम्मेलन की बात हुई है, और वह है पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ये तीनों सम्मेलन जो है ना एक साथ हो रहे हैं, एपेक, एशिया पैसिफिक सम्मेलन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप सम्मेलन, इसके बाद आसियान देशों का सम्मेलन आपने देखा, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिषद का, और इसके बाद अब ये मैं चर्चा कर रहा हूं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। होता क्या है कि जब ये तीनों इस तरह से एक साथ चलती हैं तो चीजों के गड्ढम गड्ढ होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। आपको इन्हें बिल्कुल क्लियर रखना है। दो की क्लियरिटी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के बारे में बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, यह भी बेसिकली एक एशियाई देशों का ही एक संगठन है जिसके अभी 18 मेंबर हैं, जिसमें याद रखिए कि इसमें दूसरे बहुत बड़े बड़े देश भी हैं, अमेरिका है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, भारत तो है ही। ये तो मैंने कुछ देशों के आपको नाम बताए हैं, 18 देश इसके सदस्य हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी आसियान देशों का सम्मेलन होता है, एनुअल सम्मेलन होता है, तो उसकी मीटिंग के बाद इसका भी सम्मेलन होता है। इस बार भी आपने देखा कि जैसे आसियान सम्मेलन हुआ, इसके बाद ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ, राइट? ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मित्रों, जो इम्पोर्टेंट खबर एक है आज हमारे जानने के लिए, वो कुल मिलाकर यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार के जो हमारा जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें जो आसियान देश के जो प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, उनको अपने अतिथि के रूप में बुलाया है। ये बड़ी अद्भुत बात है। मतलब कई राष्ट्र प्रमुख आप समझिए कि हमारे मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पर। और इसके बाद न्यूज में आपने ये भी सुना होगा कि सभी आसियान देश के राष्ट्र प्रमुखों ने हमारे प्रधानमंत्री जी का यह अनुरोध स्वीकार भी कर लिया है। अब आप देखिए कि किस तरह से हमारी जो विदेश नीति है उसमें जो पर्सनल टच दिए जाने की बात होती है वो आपको दिखाई देगी। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की शपथ ली थी, प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी, उस समय उन्होंने सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों को उसमें बुलाया था और सभी आए थे, इसकी उस समय बड़ी प्रशंसा हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि जनरली गणतंत्र दिवस पर सामान्यतः किसी भी एक राष्ट्र प्रमुख को एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने आसियान देशों के प्रमुखों को बुलाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसके क्या रिपरकशन होते हैं, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, लोग इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के बाद आए, अभी नहीं भी आएगा तो जब ये अतिथि हमारे आ चुके होंगे तब डेफिनेटली इस मुद्दे पर बात होगी, तो उस समय आपको ये बिल्कुल नया नहीं लगना चाहिए। और इसे आप जो प्रधानमंत्री जी ने पद की शपथ लेते समय जो सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाया था उसे जोड़ देना चाहिए, इसे जोड़कर आप देखें। मित्रों, तो न्यूज में तो बस इतना ही है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी नैतिकता पर। पहली बात तो यह फ्रेंड्स कि मैंने इस विषय का चुनाव क्यों किया, राइट? नो डाउट कि यह विषय आपके फोर्थ पेपर का विषय है और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो परंपरागत विषय है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, हमेशा चलने वाला विषय है। लेकिन अगर मैंने अभी ही इस विषय को उठाया है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। पहले तो मैं आपको कारण बता दूं। कारण यह फ्रेंड्स कि अभी कुछ ही दिनों में, लगभग 15 दिनों के अंदर आपको 3-4 घटनाएं देखने को मिली होंगी, खासकर चूंकि हम सिविल सर्विस की तैयारी के प्रिपरेशन के संदर्भ में नैतिकता की बात कर रहे हैं तो हमें उन्हीं फ्रेम से अपनी बातें उठानी होंगी। आज के न्यूज में आपने सुना कि असम में एक आईएएस ऑफिसर्स को 125 करोड़ रुपए के कुछ उस मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इससे ठीक पहले, कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि अशोक खेम का जो आईएएस ऑफिसर है हरियाणा कैडर के, उनका ट्रांसफर कर दिया गया अचानक, और शायद 25 साल के कैरियर में या जो भी उनकी सर्विस लेंथ है उसमें ये 51वां स्थानांतरण है। और अशोक खेम का इस बीच में काफी चर्चा में भी रहे हैं, वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर हैं और लगातार वो इसी तरह से ट्रांसफर भुगत रहे हैं। इससे पहले आपने सुना कि किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर जो 2014 बैच के थे वो आईएएस के एग्जाम में फिर से बैठ रहे थे और मेन एग्जामिनेशन में देते हुए नकल करते पकड़े गए। ये तीन उदाहरण आपके सामने हैं। दो उदाहरण अनैतिकता के हैं, भ्रष्टाचार के, और एक उदाहरण नैतिकता का है, ईमानदारी, बेइंतहा ईमानदारी। तो चूंकि ये तीन उदाहरण हमारे सामने हैं और इस बीच में एक और भी खबर थी कि एक आंकड़ा आया था, 2-3 दिन पहले का ही आंकड़ा था कि लगभग 500 आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और उससे आधे, लगभग 300 ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायतें मिली हैं साल भर में। तो ये बताता है कि किस तरीके से हमारे प्रशासन में एक तरीके से नैतिकता को लेकर के आड़ोलन विड़ोलन चल रहा है। आड़ोलन विड़ोलन का मतलब है जैसे पानी को आप, दूध को आप मथते हैं ना, उस तरह से मंथन का दौर चल रहा है। तो मित्रों, इसलिए मैंने नैतिकता के इस विषय को उठाया है। मैं अब दूसरी बात पर आता हूं और दूसरी बात यह है कि आप अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अनसॉल्व्ड पेपर को उठाकर देखें। चलिए हम दूर की बात नहीं करते, आप 2017 का जो अभी लेटेस्ट पेपर है आप उसको उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि उसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वह आपको नैतिकता से संबंधित ही मिलेंगे, नैतिकता से संबंधित। हालांकि भले ही उसमें सीधे सीधे नैतिकता का प्रश्न न उठाया गया हो, लेकिन उसका जो हल होगा वो नैतिकता के संदर्भ में ही होगा। यहां तक कि बाद में जब आप इस फोर्थ पेपर के पार्ट बी में जाएंगे तो पार्ट बी में जो आपको केस स्टडीज दिए जाते हैं हल करने के लिए, उसमें भी आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो संकट आता है वो नैतिकता का ही संकट आता है, कानून का संकट नहीं आता। देखिए, कानून का तो कोई संकट होता ही नहीं, कानून तो आपके सामने है ना, आप उसको आधार बनाइए और अपनी बात रख दीजिए, कह दीजिए, निर्णय दे दीजिए, चाहे फिर उससे किसी का हित हो रहा हो चाहे किसी का अहित हो रहा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। नैतिकता का संकट तो वहां पैदा होता है जहां आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं और जो मदद जिसकी आप करना चाह रहे हैं वह किया जाना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कानून उसके लिए आपको अलाउ नहीं कर रहा है, और यही द्वंद आपको धर्म संकट में फंसा देता है। उस धर्म संकट से आप कैसे निकल पाते हैं, यही आपकी चुनौती है, राइट? तो दोस्तों, मेरे पास इतना अभी समय नहीं है कि मैं आपको वे क्वेश्चंस पढ़कर सुनाऊं। हो सकता है कि मैं कल भी इसी विषय पर आपसे बात करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं समझता हूं कि फोर्थ पेपर का सबसे महत्वपूर्ण विषय टॉपिक नैतिकता है। आज मैं आपको विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि कल एनडीटीवी पर अशोक खेम का, जिनकी मैंने अभी बात की, जो शायद 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, उनका एक इंटरव्यू रवीश कुमार जी ने लिया है। वो एक लंबा इंटरव्यू है मित्रों, बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है, बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि प्लीज आप वह इंटरव्यू जरूर सुने, जरूर सुने और ध्यान से सुने। याद रखें कि फोर्थ पेपर में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि नैतिकता किसे कहते हैं, नैतिकता की क्या विशेषताएं होती है, नॉट एट ऑल। वो आपसे बड़े अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं, और ये अलग तरीके का मतलब है कि बहुत ही व्यावहारिक किस्म के प्रश्न पूछेंगे। और इस इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये कि अशोक खेमका ने जो जवाब दिए हैं वो बहुत ही व्यावहारिक किस्म के हैं, और स्वाभाविक है कि जो भी उनसे प्रश्न पूछे गए हैं वो नैतिकता पर नहीं पूछे गए हैं, वो तो उनके अपने अनुभवों को लेकर के पूछे गए हैं, आपको क्या लगता है, आपके साथ क्या हुआ, और उस पर जो उन्होंने जवाब दिए हैं मित्रों, वो अद्भुत जवाब है दोनों दृष्टियों से। याद रखिए, पहला कंटेंट की दृष्टि से आपको तथ्य मिलेंगे, और जो कंटेंट मिलेंगे बहुत ही व्यावहारिक मिलेंगे, किताबी कंटेंट नहीं मिलेंगे। दूसरे भाषा की दृष्टि से आपको लैंग्वेज देखिए कि कितनी अच्छी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, बल्कि जो सामयिक, जो यूं कह लीजिए कि जो बड़ी कॉइन लैंग्वेज होती है, जो सिक्के वाली जो भाषा होती है, यानी कि किसी भी विषय की जो भाषा होती है, उसका उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो प्लीज जब आप इसे सुने तो दोनों नजरियों से सुनिएगा, ऐसी मत सुनकर के कि सर ने कहा है तो या सुनकर के चलो इसे निपटाओ, नहीं, आप कंटेंट नोट कीजिए और साथ ही साथ भाषा पर भी ध्यान दीजिए, और जो शब्द आपको अच्छे लगे उन्हें नोट भी कर लीजिए ताकि आप अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकें, राइट मित्रों? बहुत संभव होगा तो मैं इसी विषय को कल फिर आगे बढ़ाना चाहूंगा। जहां तक फ्रेंड्स न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं आज के मेल पर। मुझे एक काफी मेल मिले हैं जिसमें मैंने कल एक दिल्ली में आर्द्रता की स्थिति को लेकर के एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर मुझे मिले हैं। उत्तर काफी कुछ ठीक भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। की पहली बात कि मैंने आर्द्रता पर उसके स्टेटमेंट को समझाने के लिए कहा था, आर्द्रता को समझाने के लिए नहीं कहा था। कुछ स्टूडेंट ने आधे पेज में आर्द्रता को समझा दिया है। दूसरी बात, मैंने आप सबसे ये भी कहा था कि आपके उत्तर मुश्किल से दो पंक्तियों का होना चाहिए, उसका भी पालन बहुत कम स्टूडेंट ने किया है। मैं अपील करूंगा, फिर से सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से सुने, अगर सुनने में कोई गलती हो गई है तो ऑडियो को फिर से शुरू करें और फिर से सुनने की कोशिश करें, और इसके बाद अपना उत्तर लिखें और एक पहले रफ उत्तर बना लें, उस पर मेहनत करें और फिर आप फेयर भेजें। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि फिर छोड़ ही देना उसको, क्या मतलब है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को ये जो प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूं वो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप छोटे छोटे उत्तरों के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकें, और इसी प्रैक्टिस के तहत आप जो यहां क्लास के लिए आए थे उसका आपको स्मरण भी हो सके कि कैसे यहां जो बात बताई गई थी उसे यहां अप्लाई करना है। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक मुझे ईमेल मिला है उत्तर प्रदेश से अंशुल का, और अंशुल ने लिखा है कि सर, मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूं और अंशुल क्लास में आई थी, और सर आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने दिया, उसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, थैंक यू सर। अंशुल, मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने तुमसे प्रश्न पूछा था तो तुम भौचक्की रह गई थी और थोड़ी देर तक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई थी, लेकिन अंततः तुमने इकोनॉमिक्स का ही शायद था, बहुत अच्छे से उत्तर दिया था जिसकी फिर सभी ने ताली बजा करके प्रशंसा की थी। और मुझे मालूम था कि अगर एक बार तुम्हारा यह संकोच टूट गया तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की ऊर्जा पैदा होगी, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम्हारे अंदर वह कॉन्फिडेंस आ गया है। पत्र लिखने के लिए, ईमेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी ईमेल लिखने वालों दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं प्रेम प्रकाश, गंगा प्रकाश, योगेश कुमार, इरफान सैफी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, पंकज, एल के मांडवी, हरि गोविंद श्रीवास्तव, रूपेश कुमार पांडे और आकाश श्रीवास्तव। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।